लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी पीड़ितों को जीवन का रास्ता मिले तथा वे यीशु के पवित्रतम हृदय के स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण दुनिया भर में रोजगारों, आजीविका के साधनों और कामगारों, उनके परिवारों और व्यवसायों के कल्याण पर असर लगातार जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने एक नया नीति पत्र जारी किया है जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर कोरोना वायरस संकट के भयावह दुष्परिणामों को दर्शाते हुए हरित, समावेशी और सुदृढ़ पुनर्बहाली की नींव तैयार रखने की कार्य योजना पेश की गई है। नीति पत्र में तीन चरणों वाली जवाबी कार्रवाई का खाका पेश किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में अल्पकाल में व्यवसायों को खुला रखने और रोजगारों की उपलब्धता बनाए रखने की सिफारिश की गई है। दूसरे चरण में मध्यम काल में कर्मचारियों के स्वास्थ्य से समझौता किए बगैर और वायरस के खिलाफ लड़ाई में ढिलाई बरते बिना ध्यान केंद्रित करना है और अर्थव्यवस्थाओं एवं कामकाज को व्यवस्थित ढंग से फिर से शुरू करने को प्रोत्साहन देना है। अंतिम चरण में दीर्घकाल पर विचार किया जाएगा जिसमें ऐसे रोजगार सृजित करने के प्रयास किए जाएंगे जिनसे हरित व सुदृढ़ पुनर्बहाली और भविष्य में समावेशी कामकाज को संभव बनाने में मदद मिले। ऐसी व्यवस्था जिसमें सामाजिक सुरक्षा और कार्यबल को औपचारिक क्षेत्र में लाने के लिए निवेश किया जाए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
कामकाजी दुनिया और कोविड-19 पर तैयार रिपोर्ट बताती है कि निर्बल समूह इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, विशेषतया अनौपचारिक क्षेत्र में कामगार, युवा, महिलाएं, विकलांगजन और प्रवासी व शरणार्थी। कोरोना वायरस संकट के कारण हर 5 में से एक युवा का रोजगार खत्म हो गया है। मई महीने के मध्य तक विश्व के 94% कामगार ऐसे देशों में रह रहे थे जहां कार्यस्थलों को बंद करना पड़ा है। तालाबंदी से प्रभावित एक ऐसी पीढ़ी, लॉकडाउन जनरेशन, तैयार होने की आशंका बढ़ गई है जिसके पास पहले की तुलना में कम हुनर और वेतन होगा, विषमताएं और व्यापक होंगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश।
इट्स टाइम फॉर अ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रीजनल नेशनल एफर्ट्स टू क्रिएट डिसेंट वर्क फॉर ऑल।
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि ये समय एक समन्वित वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रयास का है ताकि हरित, समावेशी और सुदृढ़ पुनर्बहाली की नींव पर सभी के लिए अच्छे और उपयुक्त रोजगार का सृजन हो। ताजा नीति पत्र में तीन चरणों वाली जवाबी कार्रवाई का खाका पेश किया गया है और ऐसी पुनर्बहाली की पैरवी की गई है जिसमें सामाजिक संरक्षा, अवैतनिक देखभाल, श्रम अधिकार संरक्षण और नई टेक्नोलॉजी के साथ पेश आने वाली चुनौतियों से भी निपटा जाए। कोविड-19 महामारी से पहले भी कामकाजी दुनिया पर टेक्नोलॉजी, जनसांख्यिकी बदलावों, जलवायु परिवर्तन और वैश्वीकरण जैसे कई जोखिम मंडरा रहे थे। कोरोना वायरस संकट के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पुराने ढांचे पर खड़ा करना तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन नई दिशा में आगे बढ़ते समय उसे और बेहतर बनाया जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में सदस्य देशों के राजदूतों ने बुधवार 17 जून को महासभा के 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष और सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया। महासभा के वर्तमान अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांडे ने परिणामों की घोषणा की। तुर्की के वरिष्ठ राजदूत और सांसद रहे वोल्कान बोजगीर को महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी। 5 स्थायी सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं: चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। महासभा द्वारा 5 अस्थायी सदस्यों के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर हर साल चुनाव होता है और उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के लिए निर्वाचित होने वाले देशों में भारत भी शामिल है। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष पद के साथ साथ सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव बीते सप्ताह संपन्न हो गया। तुर्की के वरिष्ठ राजदूत वोल्कान बोजकिर को नया महासभा अध्यक्ष चुना गया है, जो महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सितंबर में अपना 1 वर्ष का कार्यकाल शुरू करेंगे। इस पद के लिए बोजकिर एकमात्र उम्मीदवार थे। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों के राजदूतों ने फेस मास्क और दस्ताने पहनकर और सामाजिक दूरी बनाए रखकर मतदान किया। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए पर्याप्त मत हासिल करने के बाद भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या का चयन हुआ है। सुरक्षा परिषद के नवनिर्वाचित अस्थायी सदस्यों का 2 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू होगा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस के अनुसार अगले हफ्ते तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है। उन्होंने कहा कि संक्रमण फैलने के तेज रफ्तार महामारी के उपचार और वैक्सीन विकसित करने के प्रयासों के साथ साथ एहतियाती उपायों की अहमियत के प्रति भी आगाह करती है, ताकि बीमारी के फैलाव को रोकना और जिंदगियों को बचाना संभव हो सके। उनकी उम्मीद है कि वैश्विक महामारी COVID-19 के खिलाफ असरदार वैक्सीन मिलने की स्थिति में इस साल के अंत तक उसकी करोड़ों खुराकें तैयार की जा सकेंगी। UN एजेंसी की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कारगर वैक्सीन के व्यापक स्तर पर उत्पादन के लिए सभी देशों से पारस्परिक सहयोग का आह्वान किया। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी योजना को आकार देने में जुटा है, जिससे ये तय किया जा सकेगा कि वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्राथमिकता के तौर पर पहली खुराकें किन लोगों को दी जाएंगी। UN एजेंसी की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। हम सदस्य देशों के साथ एक प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं, ताकि न्यायसंगत तरीके से ये तय किया जाए कि वैक्सीन की सीमित आपूर्ति को किस तरह साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ये मानकर चला जाए कि वैक्सीन ट्रायल सफल साबित होंगे, तो फिर इस साल के अंत तक 1 या फिर उससे ज्यादा वैक्सीन की लगभग 20 करोड़ खुराकें उपलब्ध हो सकेंगी और अगले साल ये संख्या अरबों तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा तभी किया जा सकता है जब दुनिया एक साथ आए। इसके लिए एक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा जा रहा है, जिसके जरिए निर्णय किया जा सकता है कि वैक्सीन की प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए। जैसे अग्रिम मोर्चे पर डटे लोगों को, जिनमें ड्राइवर, एम्बुलेंस कर्मचारी और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिसकर्मी, किराने की दुकान पर काम करने वाले और सफाई कर्मचारी शामिल हैं।
श्रोताओ, कोरोना वायरस से अब तक पूरे विश्व में 97,14,951 लोग संक्रमित हैं और कुल 491,888 लोगों की मौत हुई है। भारत की बात करें तो अब तक भारत में 18,09,463 लोग संक्रमित हुए हैं और 105,301 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 16,922 नए मामले सामने आए हैं और 418 लोगों को जान गंवानी पड़ी। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
तेरे ही अंश है सभी ये आसमान, ये जमीन, ये जीवन भी तेरी कृपा है, तेरी दया से धरती थमी।
तेरे अंश कल करती चंचल नदियां पेड़ पत्ते फूल कलियां जल हो थल हो ऊंचा गगन हो पंछी पवन या बहता दरिया हो तेरी सत्ता के सब है खिलौने तेरी सत्ता के सब है खिलौने तेरी कोई ताह नहीं तेरे ही अंश है सभी ये आसमां ये जमीन ये जीवन भी तेरी कृपा है तेरी दया से धरती थमी
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। विश्व में भ्रातृत्व भाव और नागरिक सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए संत पापा फ्रांसिस ने उदारता सामीप्य और बलिदान की आवश्यकता पर बल दिया है। गुरुवार को प्रकाशित एक ट्वीट संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, विगत माहों में संपन्न उदारता के कार्यों और स्वतंत्र रूप से दिए गए प्रेम के अनगिनत उदाहरणों से हम नई शुरुआत करें जिन्होंने हमें दर्शाया है कि भ्रातृत्व और नागरिक सह अस्तित्व को पोषित करने के लिए सामीप्य देखभाल और बलिदान की आवश्यकता हुआ करती है। इस प्रकार हम मजबूत होकर इस गहरे संकट से उभर पाएंगे। दक्षिण कोरिया के सियोल स्थित कैथोलिक महागिरजाघर में कोरियाई युद्ध की 70वीं बरसी की स्मृति में ख्रीस्त त्याग अर्पित कर सियोल के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल एंड्रयू योन सुजुंग ने कहा कि यथार्थ शांति जिसकी हम सब अभिलाषा रखते हैं बहुत ही मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध को 70 वर्ष बीत गए हैं किंतु अभी भी पुनर्मिलन नहीं हो पाया है। कार्डिनल योम सुजुंग ने स्मरण दिलाया कि सन 1965 से दक्षिण कोरिया की कलीसिया पुनर्मिलन के लिए प्रतिवर्ष 25 जून को प्रार्थना को समर्पित दिवस मनाती है। कार्डिनल योम सुजुंग ने कहा कि प्रार्थना शांति का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। उन्होंने कहा, क्षमा की संस्कृति का निर्माण कर न्याय अधिक मानवीय तथा शांति अधिक स्थायी हो सकेगी। कोरियाई युद्ध में लगभग 30 लाख कोरियाई लोगों की मौत हो गई थी जिसमें प्रायद्वीप ने 1950 से 1953 तक अपनी कुल आबादी का 10% खो दिया था। संघर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के भी कम से कम 35,000 सैनिक मारे गए थे। सन 1953 के जुलाई में युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद कोरियाई प्रायद्वीप तकनीकी रूप से अभी भी युद्ध की स्थिति में है। ख्रीस्त्याग प्रवचन में कार्डिनल योन सुजुंग ने कहा कि जब क्षमा की राजनीति का प्रसार होता है तब न्याय संगत समाज का भी निर्माण होता है तथा शांति की आशा मजबूत होती है। उन्होंने प्रार्थना की कि समस्त राजनीतिज्ञ व्यक्तिगत स्वार्थ पार्टी और राष्ट्रीय हितों से परे जाएं तथा उत्तर और दक्षिण कोरिया के सामान्य कल्याण के मद्देनजर शांति हेतु प्रतिबद्ध रहें। फिलीपींस की कैथोलिक कलीसिया ने सरकार से सऊदी अरब में 350 से अधिक फिलीपिनो श्रमिकों की मौतों की जांच का आह्वान किया है जिनकी मौत कथित रूप से प्राकृतिक कारणों से हो गई थी। फिलीपींस के एक कैथोलिक धर्माध्यक्ष और फिलीपींस के विदेशी कर्मचारी संगठन ने सऊदी अरब में 350 से अधिक प्रवासियों की हालिया मौतों के पीछे सच्चाई की मांग की है। सऊदी अरब में फिलीपींस के राजदूत अदनान अलोंटो ने 22 जून को एक साक्षात्कार में कहा था कि फिलीपिनो श्रमिकों की कम से कम 353 लाशें थीं, जिनमें से 200 को फिलीपींस वापस लाने की जरूरत थी। उन्होंने कहा, अधिकांश मौतें प्राकृतिक कारणों से हुई थी, जबकि कुछ मौतें कोरोना वायरस संबंधित हैं। फिलीपींस के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के आप्रवासी संबंधी आयोग के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष रूपेर्तो सांतोस ने मौतों के प्राकृतिक होने पर संदेह व्यक्त किया है। उनकी आशंका है कि पूरी तस्वीर में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, इसलिए मध्य पूर्व में फिलीपिनो श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा तत्काल ध्यान देने की नितांत आवश्यकता है। धर्माध्यक्ष सांतोस ने एक बयान में कहा, भविष्य में जीवन की क्षति को रोकने के लिए मृत्यु के विशिष्ट कारणों की जांच बहुत जरूरी है। विदेशों में कार्यरत फिलीपिनो श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्षरत मिग्रांते इंटरनेशनल संगठन ने भी सऊदी अरब स्थित राजदूतावास से मौतों पर पारदर्शी रिपोर्ट की मांग की है। उका न्यूज से संगठन के प्रवक्ता फ्रांसिस्को बोनावेंतुरा ने कहा, हमारे मृत फिलीपिनो श्रमिकों के रिश्तेदारों को उनके प्रियजनों की मृत्यु का कारण जानने का पूरा अधिकार है। सरकार यह नहीं कह सकती कि प्राकृतिक कारणों से उनकी मृत्यु हुई है। इस दावे का समर्थन करने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड होना जरूरी है। बोनावेंतुरा ने मध्य पूर्व के अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं में फिलीपिनो चिकित्सा कर्मचारियों के खिलाफ कथित भेदभाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि कोविड 19 संक्रमित फिलीपिनो नागरिकों को उनके धार्मिक जुड़ाव के कारण प्राथमिकता नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा, ईसाइयों और मुसलमानों को वायरस से उबरने के लिए समान चिकित्सा मिलनी चाहिए। फिलीपिनो मरीजों पर भी उसी प्रकार ध्यान दिया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य मरीजों पर दिया जाता है। उन्होंने कहा, हमारी नर्सें मुस्लिम रोगियों की देखभाल कर रही हैं, इसलिए हमारी आशा है कि उन्हें भी वैसा ही चिकित्सीय ध्यान मिले जिसके वे हकदार हैं। संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल निधि यूनिसेफ द्वारा मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में सचेत किया गया कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो दक्षिण एशिया में लगभग 60 करोड़ से अधिक बच्चे आने वाले माहों में जीवन की संभावनाओं को कम होते देखेंगे। यूनिसेफ ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी दक्षिण एशिया के बच्चों के लिए किए गए स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य प्रयासों को निरस्त कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड 19 महामारी ने टीकाकरण, पोषण और अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को गंभीर रूप से बाधित किया है। वैटिकन रेडियो से बातचीत में रिपोर्ट के लेखक साइमन इनग्राम ने कहा कि कोविड 19 महामारी का सर्वाधिक प्रभाव निर्धन परिवारों पर पड़ा है जो अपनी आर्थिक क्षमता खो बैठे हैं। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि महामारी के प्रसार के कुछ ही दिन बाद परिवार अपने आप के भरण पोषण में असमर्थ हो गए थे तथा अनेकानेक मामलों में अपनी संतानों की चिकित्सीय देखभाल भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा कि स्थिति की वास्तविकता अब इस गंभीर जोखिम से स्पष्ट हो रही है कि आने वाले महीनों में लगभग 12 करोड़ से अधिक बच्चे निर्धनता की रेखा के नीचे आ जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है तथा खास तौर पर बांग्लादेश जैसे देशों में कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्हें दिन में एक बार भी भोजन उपलब्ध नहीं है। अफगानिस्तान में जारी युद्ध के कारण कुपोषण की समस्या पहले से बनी हुई है। पर्यटन पर टिके मालदीव जैसे देश भी परिवार संकट के दौर से गुजर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि विगत माहों में इंटरनेट के जरिए शिक्षा मुहैया कराई गई, किंतु दक्षिण एशिया में कई ऐसे गांव हैं जहां इंटरनेट तो दूर बिजली की आपूर्ति भी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि हालांकि महामारी की शुरुआत के समय स्कूलों को बंद करना आवश्यक हो गया था, तथापि अब भी स्कूलों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।